वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 6। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। 13 फरवरी 2019 रात 10 बजे। सुशांत और राज ढाबे पर खाना खा रहे थे। राज कुछ चुप था, सुशांत को भी ये महसूस हो रहा था। लेकिन कहते हैं कि इंसान को वही समझ आता है जो वो समझना चाहता है। राज की चुप्पी का कारण था अनंत के साथ सुशांत का बर्ताव, लेकिन इस वक्त सुशांत कुछ और ही समझ रहा था। उसने राज से कहा, अरे यार, तू यूं मुंह लटका के क्यों बैठा है? देख, मैं चिंता कर रहा हूं क्या? नहीं ना, फिर तू क्यों चिंता कर रहा है? अब देख, मुझे तो पक्का यकीन है कि आज की रात खाली नहीं जाएगी, हमें जरूर कुछ न कुछ पता लगेगा। सुशांत की बात सुनकर राज को ठीक नहीं लगा, इसलिए वो बस मुस्कुरा कर रह गया। सुशांत ने अपनी बात जारी रखी, देख, अभी तक हम बल्लियों के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन हुआ क्या, ऐसा होता है, कई बार होता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है और मुझे पक्का यकीन है कि हम जल्द ही सही ट्रैक पर होंगे। राज ने पूछा, लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमने 3-4 गांवों में पता किया, पर बल्ली तो अब वहां रहते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं? राज जहां सफलता को लेकर थोड़ा आशंकित था, वहीं सुशांत इस वक्त अति आत्मविश्वास की हद पर पहुंच चुका था। उसने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, मेरे भाई राज, इस बार हमने सारे तीर अंधेरे में चलाए हैं। निशाने ने खुद ब खुद तीर को आगे बढ़कर लपक लिया है। मुझे मेरी किस्मत पर पूरा यकीन है। क्या बताऊं यार, मुझे इंट्यूशन हो रहा है सब शानदार होने वाला है और मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, टाइम इटसेल्फ विल प्रूव इट। सुशांत के इस ओवर कॉन्फिडेंस से राज का डर और बढ़ गया था। वो सुशांत को सावधान करना चाहता था, मगर उससे कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, बट अनंत सर। राज ने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि अनंत का जिक्र आते ही सुशांत के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसने हिकारत के साथ कहा, अब तो छोड़ यार उसको, हम उसके बिना भी ये सब कर सकते हैं, बल्कि मुझे लग रहा है इस वक्त अनंत यहां होता तो हम ये सब हासिल नहीं कर सकते थे। तुझे पता है वो बड़ा सेफ गेम खेलता है, ही इज लाइक राहुल द्रविड़, द वॉल इन अवर टीम, हमेशा टिककर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करता है। पर मेरे भाई, राहुल द्रविड़ इज अ टेस्ट प्लेयर और इस वक्त हम टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं T20 और T20 मैच के भी आखिरी ओवर्स। यहां पर द्रविड़ जैसी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, यहां तो दे दनादन टिकाना पड़ता है। सो इन शॉर्ट, अनंत इज नॉट फॉर दिस मिशन। वो मेरा दोस्त है, जिगरी है, बट नॉट इन दिस मैच। सुशांत इस वक्त नशे में नहीं था, मगर उसके बात करने का लहजा कुछ ऐसा ही दिखा रहा था जैसे उसने कोई नशा कर रखा हो। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत को भी महसूस हो गया था कि उसने अनंत के बारे में जो बात की है उससे राज को बुरा लगा है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सुशांत और राज वापस से हाईवे पर आ चुके थे। उनकी SUV इतनी तेज रफ्तार में थी जैसे उसे सड़क को नापने की जल्दी पड़ी हो। सुशांत कुछ गुनगुना रहा था जबकि राज एकदम चुप बैठा था। सुशांत ने एक उड़ती हुई निगाह राज पर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो गया राज बाबू? राज ने आहिस्ता से कहा, सर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। सुशांत फिर से जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करने की जगह गाड़ी में चलते म्यूजिक के वॉल्यूम को और बढ़ा दिया। राज का हाथ बरबस ही सीट बेल्ट पर चला गया, मानो चेक करना चाह रहा हो कि उसने सीट बेल्ट लगा रखा था या नहीं। तभी सुशांत को गाड़ी की चाल में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने कहा, शायद पिछले टायर से हवा निकल रही है, ये तो पंक्चर लग रहा है। 14 जनवरी 2019 सुबह के 8 बजे। रात भर की ड्राइविंग के बाद अनंत ज्ञान के साथ उस गेस्ट हाउस में पहुंच चुका था जहां उनकी पूरी टीम ठहरी हुई थी। रात को भी अनंत ने 2-3 बार सुशांत का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर राज को देखकर अनंत के दिमाग से सारी टेंशन जैसे गायब हो गई। राज उसे देखकर आश्चर्यचकित था। उसने छूटते ही बोलना शुरू कर दिया, अनंत सर, बहुत अच्छा किया जो आप यहां आ गए, यहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राज की आवाज से झलक रहा था कि वो भी काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए अनंत ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, अब हम लोग आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। अनंत के मुंह से हम शब्द सुनते ही राज की आंखों में चमक आ गई। अनंत और सुशांत में यही सबसे बड़ा फर्क था। अनंत जहां हम था, वहीं सुशांत मैं था। अनंत हमेशा पूरी टीम की बात किया करता था, जबकि सुशांत के मैं को राज ने पिछले दो दिनों में इतना ज्यादा झेल लिया था कि उसे अब अपने अस्तित्व पर भी शक होने लगा था। अनंत ने आगे पूछा, सुशांत का है? अनंत की बात सुनते ही राज से जवाब देते नहीं बना, सर वो। अनंत को राज का जवाब सुनकर झटका लगा, राज सुशांत का है? राज चुप हो गया, जैसे उसे जवाब नहीं सूझ रहा हो। उसने चारों तरफ देखा और उन दोनों को वहां से बाहर एक तरफ लेकर चला गया। आखिरकार उसने बताना शुरू किया, सर एक्चुअली जिस वक्त आपसे बात हुई उस वक्त हम बल्ली कम्युनिटी के लोगों को ढूंढने जा रहे थे। डू यू नो अबाउट बल्लीज? अनंत ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता लग गया था, तुम आगे बताओ। हम लोग हाईवे पर काफी आगे तक गए, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं लगा। वहां से लौटते वक्त काफी रात हो गई थी, बीच में हमारी गाड़ी के दो टायर पंक्चर हो गए। ज्ञान बीच में ही बोल पड़ा, दो टायर एक साथ पंक्चर? राज ने कांपती आवाज में आगे बताया, हाँ बीच में हम लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे, शायद वहीं किसी ने हमारी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए। सुशांत सर को समझ आ गया था कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोग वापस गाड़ी में बैठने लगे, मगर उससे पहले ही एक जीप में कुछ लोग वहां आए और हमें रोक लिया। अनंत बोल पड़ा, व्हाट? अनंत को यह सब जाना पहचाना लग रहा था। फर्क बस इतना था कि पहले राज के साथ अनंत था, लेकिन यहां राज के साथ सुशांत है। उधर राज आगे अपनी बात बता रहा था, सर वो लोग पता नहीं हमसे क्या चाहते थे, ऐसा लग रहा था कि लूटपाट करना उनका पर्पज नहीं था। अनंत ने पूछा, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? सर बस लग गया, क्योंकि जो लूटने आएगा वो आते ही पहले अटैक करेगा, मगर उन्होंने हमें डराने की कोशिश की और गाड़ी में बैठने के लिए कहा। तभी सर सुशांत सर ने अपने पास से रिवॉल्वर निकाल ली। व्हाट? राज की बात सुनकर अनंत को झटका लगा था। हाँ सर, उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें पहले से पता था कि ये बल्ली कम्युनिटी के लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन्होंने कहीं से गन अरेंज कर ली थी। सुशांत सर के हाथ में गन देखकर वो लोग डिफेंसिव हो गए, इवन सुशांत सर ने उनको बहुत बुरी तरह से डरा दिया था, उनमें से दो को तो उन्होंने मुर्गा बना दिया था। ज्ञान बीच में बोला, मुर्गा? अरे वो स्कूल में पनिशमेंट में टीचर बच्चों को मुर्गा नहीं बना देते थे क्या? अनंत ने बीच में टोका, ठीक है तुम आगे बताओ। सर उसके बाद सुशांत सर ने उनमें से एक दो को गन पॉइंट पर लेकर उनसे पूछताछ शुरू की कि उन लोगों ने हमें क्यों रोका है, मगर उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, इवन सुशांत सर ने एक दो थप्पड़ रख दिए उन लोगों के। इसके बाद सर ने उनसे गाड़ी का पंक्चर रिपेयर करवाया, फिर हम लोग वहां से निकलने वाले थे कि तभी सुशांत सर को उन बदमाशों में से एक के हाथ पर वही निशान दिखाई दिया जैसा उस कोन पर बना हुआ था। ज्ञान बीच में बोल पड़ा, हाथ पर निशान? हाँ, उनमें से दो तीन लोगों के हाथ पर उस निशान का टैटू बना था। ये देखकर सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि वो लोग बल्लीज ही थे। हम जिन ढाणियों में उनको ढूंढने के लिए गए थे वहीं से ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे, और जब हम लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके तभी उन स्टूपिड्स ने हमारी गाड़ी पंक्चर कर दी होगी। अनंत हैरत से राज की तरफ देख रहा था, इसलिए राज ने डिटेल में पूरी बात को समझाया। सर एक्चुअली उस कोन की मिस्ट्री सॉल्व करते करते हमें यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी से एक बुक मिली थी, उसमें लिखा था कि वो कोन एक रिचुअल के काम आता है, और उस रिचुअल को बल्ली कम्युनिटी के लोग परफॉर्म किया करते थे, और इन बल्लीज के हाथ पर ठीक वैसा ही टैटू बना होता था जैसा उस कोन पर सिंबल बना था। सुशांत सर ने वो टैटू देखते ही उन लोगों से पूछा कि तुम बल्ली हो? वो लोग मना करने लगे, मगर एक दो थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद सुशांत सर ने कहा कि वो उनसे किसी मिस्ट्री के बारे में बात करना चाहते हैं। पहले तो वो लोग मना करते रहे, मगर फिर उनमें से एक ने अपने बॉस से मिलने के लिए कहा। सुशांत सर ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनको मना किया था, मगर पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो किसी की भी नहीं सुन रहे। फिर सामने से एक बस आती दिखाई दी तो उन्होंने मुझे बस में बैठा दिया और खुद उन लोगों के साथ चले गए। मैं रात को 3 बजे यहां गेस्ट हाउस पहुंचा था। पूरी बात सुनकर अनंत का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और सुशांत को क्या हो गया है। सुशांत ने इतनी रात को तुम्हें अकेला भेज दिया? सर, पिछले 2-3 दिनों में सुशांत सर एकदम बदल गए हैं। सॉरी टू से, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। बट सर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस रिस्की हो सकता है, अनंत ने कहा। फिर सुशांत का कॉल आया तुम्हारे पास? सर, जिस एरिया में हम थे वहां नेटवर्क का इशू है, मेरा फोन खराब है, इसलिए मैं यहां रिसेप्शन से कई बार उनका फोन ट्राई कर चुका हूं लेकिन उनका नंबर लग ही नहीं रहा। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, अनंत झुंझला उठा। सुशांत, तुझे क्या हो गया है? अरे, इतनी बड़ी बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है? राज ने कहा। सर, उन्होंने यहां किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था। गेस्ट हाउस के ओनर ने मुझसे इतनी रात को अकेले आने का रीजन पूछा लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, अनंत ने कहा। लेकिन थोड़ी देर में सुबह के 9 बजने वाले हैं और रात भर से सुशांत का कोई पता नहीं है। हाँ सर, अप्रोक्सीमेट 12 बजे उन्होंने मुझे बस में बैठने को कहा था। अनंत सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। उसे सारी बातें जानी पहचानी लग रही थी लेकिन सुशांत का इस तरह बल्लियों से मिलने चले जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने कहा, हमें पुलिस से बात करनी चाहिए। राज बोल पड़ा, लेकिन हम पुलिस को क्या बताएंगे, वो सारी बातें पूछेंगे, अनंत ने सोचते हुए कहा। मगर कुछ तो बताना होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकते, सुशांत खतरे में भी हो सकता है। अचानक से अनंत को एक बहुत बुरी अनुभूति हुई। उसे ऐसे लगा जैसे सुशांत उसका साथ छोड़कर जा रहा हो। वो सिहर उठा लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और राज और ज्ञान के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। किसी अपनी चीज को छूटने का एहसास बहुत बुरा होता है। अनंत को बार बार सुशांत को लेकर बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे लग रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से वो सुशांत को लेकर जो कुछ महसूस कर रहा था वो सब सच होने वाला है। बस इस ख्याल से ही उसकी झुरझुरी छूट रही थी। उसने ज्ञान से कहा, ज्ञान थोड़ा तेज चला। ज्ञान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। इस वक्त गाड़ी में एक मरघट का सा सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर में ही वो लोग शहर के बाहर हाईवे के पास पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। शहर से बाहर हाईवे के इलाके के मामलों में यही थाना लगा करता था। तभी ज्ञान ने उसका ध्यान बाहर पार्किंग में खड़ी एक एसयूवी पर दिलाया। सर, ये तो सुशांत सर की गाड़ी है। इस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था। अनंत तेजी से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखकर उसकी जान में जान आई। वहां सुशांत एक पुलिस वाले से बात कर रहा था। अनंत और सुशांत का आई कॉन्टेक्ट हुआ। अनंत को देख सुशांत चौंक उठा लेकिन वापस उस पुलिस वाले से बात करने लगा। अनंत को लगा जैसे सुशांत उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। सुशांत ने पुलिस वाले से हाथ मिलाया और वहां से बाहर आने लगा लेकिन तभी सुशांत को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। तो जा रहे हैं आप? सुशांत ने जवाब दिया। जी, अगर आपकी परमिशन हो तो। सुशांत का जवाब सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उसे घूरकर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुशांत से चिढ़ा बैठा हो। आखिरकार उसने कहा, हम कैसे रोक सकते हैं आपको? सिफारिश जो आ गई आपके लिए, मगर ये ध्यान रखना आप इन्वेस्टिगेशन के दायरे से बाहर नहीं हैं। सुशांत ने पूछा, सर आप कौन से इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऑफिसर ने कहा, आप वाकई में इतने भोले हैं, मुझे पता नहीं था। आप रात को जिस जगह पर तफरी कर रहे थे वहां एक कुख्यात डकैत गिरोह का अड्डा था। हमने उस जगह से काफी सबूत जुटाए हैं। सुशांत ने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला होगा। ऑफिसर ने चिढ़कर जवाब दिया, सुशांत जी, हर बार सबूतों की जरूरत नहीं होती है, कई बार सवाल अपने आप में सबूत होते हैं और आप अभी तक इस बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए हैं कि इतनी रात को उस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे थे। सुशांत ने अपने उसी अंदाज में कहा, सर मैंने कहा ना, मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। मैं तो ऐसे ही घूमते घूमते वहां चला गया, मुझे थोड़ा ना पता था कि वहां पास में ही डकैतों का अड्डा है। सुशांत जी, आप वाकई में बहुत भोले हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी कहानी पर यकीन करूंगा। खैर, अगर आप शहर छोड़कर जाएं तो आप मुझे इन्फॉर्म करके जाएंगे। सुशांत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाकर बोला, जी श्रीमान जी, आपकी परमिशन से ही जाऊंगा यहां से। वो ऑफिसर सुशांत की बात में छिपा तंज समझ गया था, इसलिए वो कुछ सेकंड उसे ऐसे ही घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। जाते जाते अनंत उसके चेहरे की झलक भर देख पाया था, मगर इतनी देर में ही उसे एक और झटका लगा। ये क्या हो रहा है? शायद इस पुलिस ऑफिसर को भी जानता हूं मैं। हां, अनंत उस पुलिस ऑफिसर को अच्छी तरह से जानता था। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने कुंवर अनूप सिंह के साथ बल्लियों पर अटैक किया था। लेकिन अनंत को यह बात ध्यान नहीं आ रही थी। तब तक सुशांत भी वहां से आ गया। उसने अनंत की तरफ देखा और उसे बात किए बगैर वहां से बाहर अपनी गाड़ी के पास चला गया। ज्ञान और राज को भी सुशांत का यह एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। तब तक सुशांत ने सिगरेट सुलगा ली थी और वह धुएं के छल्ले बनाते हुए गुनगुनाने लगा। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तब तक अनंत भी उसके सामने पहुंच चुका था। अब सुशांत उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अनंत की तरफ सिगरेट बढ़ा दी। अनंत ने सिगरेट ली और वो भी सिगरेट के कश खींचने लगा। सुशांत अनंत को देखकर हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देख अनंत ने भी हंसी में उसका साथ दिया। दोनों को इस तरह हंसते देख ज्ञान और राज ने राहत की सांस ली। अनंत ने पूछा, यहां कैसे पहुंच गया और वो पुलिस वाला क्या कह रहा था? सुशांत ने शेखी बघारते हुए कहा, वो पुलिस वाला, वो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था, पर उसको पता नहीं कि यहां उसके भी बाप बैठे। सुशांत की बात वहां किसी को समझ नहीं आई थी। खैर, सबसे पहले राज ने पूछा, सर फिर रात को क्या हुआ? सुशांत ने सिगरेट का लंबा कश फूंका, फिर पहले राज की तरफ देखा, फिर अनंत की तरफ देखते हुए ऊपर हवा में धुआं छोड़ने लगा। राज उसका इशारा समझ गया था। सर, मैंने अनंत सर को सब कुछ बता दिया है। सुशांत अभी भी अनंत से थोड़ा कटा कटा सा था, लेकिन उसने बताना शुरू किया। वो डकैत मुझे अपने सरगना के पास लेकर गए, और उनका सरगना सुशांत घमंड भरी हंसी हंसने लगा। मैंने जाते ही उसको कहा, कैसे चचुंदर भर रखे हैं तेरे गैंग में, तो पहले तो उसने अपने ही आदमियों की क्लास ले ली। फिर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा हूं। पहले तो वो थोड़ा नाटक दिखा रहा था, फिर जब मैंने उसे कहा कि मैं इस निशान के बारे में जानता हूं और तुम लोगों के बारे में भी, तो वो थोड़ा ढीला पड़ गया, फिर हम लोगों की डील हो गई। राज आश्चर्य से बोला, सर डील हो गई? सुशांत हंसने लगा। बेटा राज, तूने सुना नहीं क्या, पावर रिगार्ड्स पावर ओनली। ये बल्ली लोग खूंखार क्रिमिनल्स हैं, ये ऐसे नहीं समझते हैं, इनसे अलग तरह से बात करनी पड़ती है। मैंने उसे उसका प्रॉफिट समझा दिया, वो भी समझ गया कि उसे मेरा जैसा बंदा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर वो मुझसे इंप्रेस हो गया, फिर उसने मुझे बीड़ी पिलाई। अनंत चौंक कर बोला, बीड़ी? बदले में सुशांत ने हंसते हुए कहा, हाँ बीड़ी। अनंत ने पूछा, उसका नाम क्या था? सुशांत ने जवाब दिया, भाई नाम वाम नहीं पूछा मैंने, उससे पहले पुलिस आ मरी वहां पे। राज बोल पड़ा, सर मगर एकदम से पुलिस कैसे आ गई वहां? सुशांत ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आया, फिर पता लगा कि उनके एक बंदे को पुलिस ने धर लिया था, उसी ने उगल दिया होगा वहां का ठिकाना। उसके बाद क्या होना था, वो सारे लोग वहां से भाग लिए और मैं वहां से थोड़ी दूर गाड़ी रोककर सिगरेट पीने लगा, फिर पुलिस मेरे पास आ गई और वहां से थाने। ये पुलिस वाला मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि मैं वहां क्या कर रहा था। मैंने एक फोन घुमाया और सारा मामला सेटल। राज ने पूछा, सर आपने किसको फोन किया? सुशांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तू जानता है उसको। राज ने कंफर्म करना चाहा, कुंवर अनूप सिंह? सुशांत हंस दिया, यस, बहुत ऊंची चीज है वो, उसका एक फोन आया और इनकी सारी हवा निकल गई। सुशांत वापस से हंसने लगा। अनंत चुपचाप सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी दोनों गाड़ियों में बैठकर गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। आप सुन रहे थे कालशंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 6। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।